فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر ثاقب۔ دلچسپ معلومات ہوں گی، طبی معاملات ہوں گے اور بھی بہت کچھ۔ سلسلے میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز یعنی آج کا سوال، اور اس کے بعد مین ٹاپک ہوگا۔ آج ہمارے ٹاپکس اسارٹڈ ہیں، بلڈ پریشر پر بات کریں گے، سلیپ نیند پر بات کریں گے، نوزائیدہ بچوں کی ہینڈلنگ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اور سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا۔ رمضان مبارک کا تذکرہ خیر بھی ہوگا، اور ایک ٹپ آف دا ڈے، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ یہ کہ دین اسلام جانوروں کے حقوق کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جانور کھڑا ہوتا اور اس کے جسم کا جو حصہ پسند ہوتا جا کے زندہ جانور سے وہ کاٹ لیا جاتا۔ اسلام نے ہمیں ایک بہترین انداز دیا ہے، وہ کیا ہے جانیں گے سلسلے کے آخر میں۔ اور اب آئیے آج کے کوشچن کی طرف، اور پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ سے ہوگا۔ ڈاکٹر اسامہ، یہ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ کپڑے کا، بڑھئی کا یا کھیتی باڑی؟
کپڑے کا۔
آپ نے فرمایا کپڑے کا، آپشن نمبر ون۔ آئیے اب ڈاکٹر ثاقب بھائی کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ بتائیے قرآن پاک میں لفظ سورت کتنی دفعہ آیا ہے؟ سورت الناس وغیرہ جو لفظ سورت ہے، یہ کتنی دفعہ آیا؟ 9 دفعہ، 10 دفعہ یا 7 دفعہ؟
7 دفعہ
آپ نے کیا۔ دونوں ڈاکٹر صاحبان نے جواب دے دیے، سلسلے کے آخر میں صحیح جواب جانیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کتاب فیضان رمضان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، بادشاہ عادل کی، روزہ دار کی بوقت افطار، اور مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ پیارے روزہ داروں، الحمدللہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آہ، اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے انواع اقسام کے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ اسلامی بھی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت نہیں ملتی، بلکہ بعض اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، جنت کے طلبگاروں، اتنی بھی غفلت مت کیجئے۔ نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے، بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک ہے بلڈ پریشر۔ جب دل دھڑکتا ہے تو وہ خون کو پورے جسم میں سرکولیٹ کرواتا ہے، پورے جسم میں خون گردش کرتا ہے، ایک خاص طاقت سے اور ایک خاص سپیڈ سے خون کی گردش ہوتی ہے، اس کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خون کی گردش بلڈ پریشر، یہ کیا ہے اور یہ کس صورت میں بیماری بن جاتی ہے؟
देखिए ब्लड प्रेशर का इस तरह से कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है कि जब दिल खून को पंप करता है और खून की नालियों के अंदर खून जाता है तो एक खास प्रेशर के साथ खून को दिल की खून की नालियों के अंदर पंप करता है। अब जब खून दिल की नालियों के अंदर से गुजरता है तो वो उनकी दीवारों के ऊपर एक खास प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई पानी का पाइप है और आप उस पानी के पाइप से पौधों को पानी लगा रहे हैं, आप उसके आगे अगर अंगूठा रखते हैं उसके सुराख को आप छोटा कर देते हैं तो पानी ज्यादा तेजी के साथ ज्यादा प्रेशर के साथ जाता है, अगर आप उसको जो है ना वो खुला छोड़ते हैं तो वो कम प्रेशर के साथ जाता है। तो इस तरह से खून की नालियों के अंदर से खून निकलता है तो वो भी एक प्रेशर के साथ खून की नालियों के अंदर जाता है। दिल ने किस जोर के साथ उस खून को पंप किया और खून की नालियों का जो डायमीटर था यानी कि उनकी मोटाई थी वो कितनी थी, उनकी वॉल्स उनकी दीवारें थी वो कितनी फ्लेक्सिबल थी, ये सारी चीजें जो है ना वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, उसके अंदर इनका बहुत अहम रोल है। अब अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा चले जाता है तो खून की नालियां जो है वो मुतासिर होती हैं, दिल को ज्यादा जोर के साथ खून को पंप करना पड़ता है क्योंकि आगे से रेजिस्टेंस उसको ज्यादा मिल रही होती है, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा देर तक रहता है तो दिल की खून की नालियों की जो दीवारें हैं वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं और हर जिस्म का जो उज्व है हर ऑर्गन है उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं, जिसमें खास तौर पर हमारा जो गुर्दे हैं किडनीज हैं उनके ऊपर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों का मुतासिर होना और गुर्दों का आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाना ये अमल में आता है, और दिल के जो नालियां हैं जो जो दिल को खून सप्लाई करती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने का अमल ज्यादा तेज हो जाता है और हार्ट अटैक का चांस होना वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह जो हमारा दिमाग है दिमाग के अंदर जो खून की नालियां हैं उनके अंदर भी जो चर्बी है उसके जमने का अमल ज्यादा तेज हो जाता है, वो खून की नालियां ज्यादा सख्त हो जाती हैं और ब्रेन हेमरेज यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज दिमाग की खून की शरीर में फटने का चांस बढ़ जाता है।
हो दिल हो या दिमाग हो अहम तरीन वाइटल ऑर्गन वो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए उससे मुतासर होते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन रमजान मुबारक में एक रिवाइज रूटीन होती है, री एडजस्ट रूटीन हो जाती है, सहरी में उठना होता है और खुश नसीब आशिकान रसूल वो तहज्जुद की सआदत भी हासिल करते हैं, और इफ्तार में खाने के बाद भी एक सेटिएटी की कैफियत हो जाती है, पेट भर जाता है, गनूदगी तारी होती है, और यहां पर एक रूटीन होनी चाहिए सोने की। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लीप के सोना कब कब और कैसे होना चाहिए। उसामा आप इरशाद फरमाइए कि सोना जो है वो रमजान मुबारक के महीने में सहरी के बाद कुछ लोग फौरन सो जाते हैं, कुछ रमजान मुबारक के अंदर इफ्तारी के बाद उनको एकदम से नींद आती है, क्या रूटीन इसमें एडजस्ट करनी चाहिए?
देखिए रमजान मुबारक में जब हमारा डाइट प्लान चेंज होता है तो हमारी जो स्लीपिंग जो हैबिट्स हैं उनमें भी हमें कुछ ना कुछ तब्दीली लानी पड़ती है, क्योंकि हमने सहर के वक्त सहरी के लिए उठना है, सहरी का खाना खाने के लिए भी उठना है, तो इसलिए हमारी वो जो एक नॉर्मल रूटीन होती है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। इस हवाले से हमें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी नींद के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिसमें हम अन इंटरप्टेड स्लीप, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी एज के हवाले से, अगर बच्चे हैं तो उनकी नींद की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बड़ों की कम होती है, तो उतने घंटे आप किसी भी रुकावट के बगैर आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। अगर आप इंटरप्टेड स्लीप लेंगे तो उसमें आपकी जो नींद का जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो सकेगा। दूसरी बात ये कि खाना खाने के फौरन बाद मत सोइए, कि अमूमन इस तरह से होता है कि सहरी के वक्त घर वालों ने जगाना शुरू किया कि बेटा उठो सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, तो एन टाइम पे जो है ना उठे हैं, जल्दी जल्दी से खाना खाया है और फौरन नमाज पढ़ के दोबारा से लेट गए, और सहरी के वक्त आपने खाना भी खूब डट कर खा लिया है, पानी भी खूब डट कर पी लिया है, तो जब फौरन लेट जाएंगे तो उससे वो खाना वापस खुराक की नाली में आएगा जिसकी वजह से सीने में जलन होगी और बदहजमी का शिकार आप हो जाएंगे। तो लिहाजा अपने डाइट के हवाले से आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि सहरी में बहुत ज्यादा मत खाइए, और उसके बाद कुछ देर इंतजार कीजिए, नमाज फजर अदा कीजिए, तिलावत कुरान में मसरूफ हो जाइए, जिक्र अजकार कर लीजिए कि वो खाना जब कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाए तकरीबन दो घंटे तक वो मैदे से आगे की तरफ मूव कर जाता है और मैदा आपको काफी हद तक लाइट हो जाता है, तो फिर आप अपनी
ये वही बात जो कि रेगुलर रूटीन के अंदर जो हम सुनते हैं डॉक्टर साहिबान से कि खाने में और सोने में तकरीबन दो से तीन घंटे का फर्क होना चाहिए, ये फर्क जरूर डाला जाए। मदनी चैनल के नाजरीन नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक यानी इंसान सोता क्यों है हम इसकी रिसर्च सुनने लगे हैं, नींद के दौरान याददाश्त और सोचे कंसोलिडेट हो रही होती हैं, जागते वक्त इंसान बहुत सी नई बातें सीखता है, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मालूमात हैं, और सोते हुए ये सारी नई बातें इकट्ठी होती हैं, इन पर काम होता है और इसको फिर स्टोर किया जाता है, जिसको मेडिकल साइंस में कंसोलिडेशन कहा जाता है। इंसान अपनी जिंदगी का एक तिहाई सोने में गुजार देता है, एंड फॉर दिस शट आई इज इम्पॉर्टेंट, ये आंखें बंद करने वाला अमल यानी सोना ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ और भी बहुत से नजरियात है कि इंसान सोता क्यों है। बहरहाल ज़हनी याददाश्त वाली जो बात हमने शेयर की कि सोना बहुत जरूरी है, स्लीप साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के सन 2014 में एक जर्नल लिखते हैं न्यूरो साइंस के ऊपर, उसमें वो लिखते हैं कि 24 घंटे की स्लीप डिप्राइवेशन यानी 24 घंटे अगर एक इंसान नहीं सोता, सेहतमंद आदमी है उसकी बात में उसके जिस्म में तब्दीली पैदा हो जाएगी, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, याददाश्त पर असर पड़ेगा और उसको कुछ ख्याली तस्वीरें भी नजर आ सकती हैं, जिसको स्किट्सोफ्रेनिया कहा जाता है, और मियार से कम स्टैंडर्ड से कम नींद लेना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साकिब, स्टैंडर्ड से कम भी नींद ना ली जाए और दिन रात जागा भी ना जाए, इसके हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएं।
इसमें ये है कि आप अपनी स्टैंडर्ड से नींद जो रेकमेंडेड नींद है उससे आप कम लेंगे, जितनी नींद आपको लेनी चाहिए उससे अगर आप कम लेंगे, जो कि मतलब कि हेल्दी एडल्ट में 7 से 8 घंटे के दौरान एवरेज औसतन है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें सामने आ सकती हैं। उसमें बेसिकली ये है कि जब आप नींद अपनी पूरी नहीं रखेंगे, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपके जहन ने सोचने का अमल करना है, जो बाकी चीज़ें करनी है, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। के साथ भी अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो खसूसन आप ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स स्केल्स हैं जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना होता है, जैसे कि ड्राइविंग है, उसमें आपने करना है, वो मुतासिर होगा। आप ड्राइविंग के दौरान सो सकते हैं, सोते हुए ड्राइविंग में जो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा जब आप नींद नहीं पूरी करेंगे तो आपके जो तबीयत में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सीलापन आएगा, आप फ्रेश अपने आप को फील नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो एक्टिविटी जो है सारी आपके वो मैक्सिमम पे नहीं हो पाएगी, आप अपना वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना आपका पढ़ने का दिल करेगा, ना और काम करने का दिल करेगा। इसके लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें दिमाग को एक पूरा दिमाग को जो है ना पूरा रेस्ट मिलता है और वो एक नए सिरे से एक नई एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म।
डॉक्टर साहब, इसमें आपकी बात में ऐड करूंगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि रेस्ट मिलने से वो चीजें रीजनरेट होती हैं और नई सोचें आती हैं, इसी तरह खून ले जाने वाली नालियां, दिल और दीगर ब्लड वेसल्स और दीगर जो ऑर्गन्स है उनकी रिपेयर और हीलिंग का, यानी उनकी बिल्कुल रिपेयर का, उनको दोबारा से मुरम्मत करने का काम वो नींद के दौरान होता है, और बहुत सी बीमारियों का डायरेक्ट लिंक वो इसके साथ है कि इंसान सोता नहीं है। ये एक बॉडी की चार्जिंग है, यूं समझ ले जैसे मोबाइल फोन आपके पास है, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, आप चार्जर पे लगाते हैं, उसकी चार्जिंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये सोना ये भी रेगुलर रूटीन के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर ये एक चार्जिंग की हैसियत रखता है। बच्चों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, वैसे बच्चे इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जब उनको कहा जाता है आ जाओ सो जाओ, आ जाओ सो जाओ, वो सोते नहीं है, लेकिन बच्चों को लाजमी वक्त पे सोना चाहिए और 9 से 11 घंटे की नींद ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। नींद के दौरान एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं और वो है ख्वाब एक पुरसरार और इंतहाई दिलचस्प तजर्बा है एक इंसान की जिंदगी में। माजी में ऐसी अकवाम का जिक्र हमें मिलता है जहां पर जब भी ख्वाब देखे जाते थे, हुकूमत की तरफ से एक महकमा डिपार्टमेंट बना होता था कि वो ख्वाब वहां पे आके जमा कराओ और फिर वो उसके ऊपर तहकीक किया करेंगे अपने अजीब अजीब अकायद की वजह से। इंसान जो ख्वाब देखता है उसका 90% वो भूल जाता है। नाबीना अफराद आंखों से महरूम भी ख्वाब देखते हैं, ताहत्ता कि कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो जाए हर बंदा ख्वाब देखता है। 1960 के बाद की गई तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई कि सिर्फ 4.4% ख्वाब जो 25 साल से कम उम्र अफराद ने देखे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, वरना ख्वाब आमतौर पर रंगीन होते हैं। दावत इस्लामी के शाती दारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा किताब आईना इबरत के सफा नंबर 77 पर दर्ज है, मोमिन के अच्छे अच्छे ख्वाबों की बहुत वक्त और अहमियत है, क्योंकि हदीस पाक में आया नबूवत में से मुबशरात के सिवा कुछ बाकी नहीं रह गया, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने कहा मुबशरात क्या हैं, तो इरशाद फरमाया अच्छे अच्छे ख्वाब जो मुसलमान उसको अपने लिए देखे या कोई दूसरा उसके लिए देखे। डॉक्टर सामा, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ने लगे हैं। मैं आपकी कंट्रीब्यूशन चाहूंगा, मैं नींद के अंदर पहले उसका तारुफ दे दूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 20% अफराद उनके अंदर नींद की कमी पाई जाती है, इंसोमनिया जिसको कहते हैं, और ये नींद की कमी उनके वर्कआउट रिजीम में, उनके डाइट प्लान में, हर चीज के ऊपर असरअंदाज होती है। एक खास जदवल होना चाहिए कब सोना है कब उठना है, वो काम डिस्कस करेंगे जो इंसान को सोने से पहले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, यानी वो काम जो कि नींद आवर हैं या नींद को उड़ा देते हैं। पहला काम जो मेरे पास रिसर्च में लिखा है वो कैफीन है। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि कैफीन का नींद के अंदर क्या रोल हो सकता है?
नींद को कम कर देती है, सोने के अमल में मुश्किलात पैदा करती है। बेसिकली इसका जो मेन एक्शन है वो ये कि हमारे माइंड को एक्टिव कर देती है, ब्रेन को एक्टिव कर देती है, हमारे निजाम इन्हजाम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है। तो लिहाजा नींद लेने से पहले कैफीन का इस्तेमाल ये मुनासिब नहीं है, ये नींद के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। जागने से नींद में जाने का जो अमल है उसमें ये जो है ना हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा, नींद आने में जो है ना ये मुश्किलात पैदा करेगा, फिर आपकी नींद इतनी पुरसकून नहीं रहेगी। तो इसलिए कैफीन
से अवॉइड करना चाहिए। ऐसी हैं जिनमें कैफीन मौजूद होती है, वो कौन सी चीजें?
सबसे जो मेन चीज जिनमें कैफीन है वो आपकी कॉफी है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें कैफीन बहुत ज्यादा हद तक मौजूद होती है, कुछ हद तक चाय के अंदर जो ना वो कैफीन मौजूद होती है, चॉकलेट्स के अंदर कैफीन बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है। एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं जो यूज की जाती हैं अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, उनके अंदर कैफीन बहुत ही ज्यादा मिकदार के अंदर, बाज तो इतनी ज्यादा मिकदार के अंदर होती है कि उनके ऊपर जो है ना वो बाज ममालिक के अंदर पाबंदियां भी ऐड कर दी गई हैं के वो इस्तेमाल ना की जा सके। तो इसलिए इन चीजों से जो है ना वो परहेज।
डॉक्टर साहब के सोने से पहले जो और मेरे पास एहतियात रिसर्च पे लिखी है वो ये है कि एक्सरसाइज मुनासिब की जाए और थोड़ा चल लिया जाए, इस बारे में आप इरशाद फरमाएं।
एक एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसके मुख्तलिफ फायदे होते हैं जो कि नींद में आपको इसमें हेल्प करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप एक ताज़ा आबो हवा बाहर से लेंगे। अब ताज़ा आबो हवा जब लेंगे तो वो एक नींद को लाने में एक बहुत अच्छी एक चीज़ है। इसके अलावा आपके खून की गर्दिश जब होती है, जब खून की गर्दिश होगी तो खून आपके सारे अज़ा को तेज़ी से पहुँचेगा, जब वो तेज़ी से पहुँचेगा तो फ्रेश जो अज्जा हैं खून के अंदर, फ्रेश जो चीज़ें हैं वो हर अज़ा तक पहुँचेंगी। जिस तरह दिमाग को भी खून की सप्लाई अच्छी मिलती है, खून की सप्लाई बेहतर कंडीशन में मिलती है, जब मिलती है तो दिमाग में जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होती है और जो नए केमिकल्स खून के अंदर आ रहे होते हैं वो दिमाग को मिलते हैं और खून की सप्लाई की वजह से वो केमिकल का सिंथेसिस, उनका रिलीज, उनका सारी चीज़ों का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो उससे एक्सरसाइज करने में फायदा
देता है। मैं आगे कुछ जो और एहतियातें हैं वो अर्ज करता चलूँ ताकि हम अपने टॉपिक को स्विच ओवर कर सकें। रात को जब सोने लगे या जब भी आप सोने लगे अपने बेडरूम के अंदर खामोशी रखें और वहां पर अंधेरा जरूर हो। बिस्तर, मैट्रेस, तकिया ये भी सोने में अहम किरदार अदा करते हैं। ओवर स्लीपिंग से बचें। आमतौर पर वीकेंड्स में जब छुट्टी होती है अगले दिन खूब लंबी नींद ली जाती है, इससे आपके रेगुलर औकात मुतासर हो सकते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन यहां पर एक मैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं, बिस्तर पर मौजूद बेडशीट्स कब तब्दील करनी चाहिए? डॉक्टर एकरले ये लिखते हैं, बेड्स कैन बिकम रिजर्वॉयर्स ऑफ ह्यूमन सेल्स, बैक्टीरिया एंड बॉडीली एक्सक्रीशंस। Human sheds half an ounce of skin each week and a lot of that will be in the bed. इंसान के जिस्म का आधा ounce उसके जिल्द के खुलिए वो दुराने नींद बिस्तर पर गिर जाते हैं। इसके अलावा दीगर जरासीम वो भी बिस्तर पर अपने घर बना लेते हैं। गर्मी नमी वाली आबो हवा के अंदर छोटे छोटे जानदारों के लिए, जरासीमों के लिए ये एक आइडियल जगह बन जाती है और औसतन एक बिस्तर पे 10 मिलियन जरासीम हो सकते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियां और एलर्जीज हो सकती हैं। डॉक्टर सामा, ये जो हमने बात की, जो रिसर्च शेयर की है, तो घर के अंदर एक बिस्तर की हालत है तो अस्पतालों में क्या हाल होता होगा और अस्पतालों के बारे में क्या रवैया होना चाहिए इंसान?
देखिए, डेफिनेटली अस्पतालों के अंदर जो मरीज होते हैं उनकी जो बॉडी की एक्सक्रीशंस हैं, जैसे कि ब्लड है, पसीना है और जिस्म से निकलने वाली पीप है, रेशा है, तो ये सारी चीजें उनकी बेडशीट के ऊपर लग जाती हैं जिसकी वजह से उनमें जरासीम कहीं ज्यादा जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो इसीलिए एक पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो उस बेडशीट चेंज की जाती है और उन जरासीमों से जो है ना वो छुटकारा हासिल किया जाता है। और रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम बेडशीट चेंज होती हैं, तो ये सारी की सारी जो बेडशीट का चेंज होना और ये सारा कुछ जो किया जाता है खास तौर पे।
यहाँ पर एक और चीज में ऐड कीजिएगा, कुछ मरीज ऐसे होते हैं वो इसरार करते हैं हमने बिस्तर यानी अस्पताल में रहना है, आप उसको रिलीज करना चाह रहे हैं लेकिन अस्पताल में रहते हैं।
देखिए ये बाज जगहों पे ये होता है कि मरीज ये समझता है कि मैं जो है ना अभी यहाँ से मजीद जो है ना वो सेहत याब होके जाऊं, जबकि डॉक्टर को मालूम होता है कि अब ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है, अब अस्पताल के एनवायरनमेंट से निकलकर जब घर के खुशगवार माहौल के अंदर जाएगा और वहां के जरासीमों से पाक माहौल के अंदर जाएगा तो ये मजीद तेजी के साथ रिकवरी की तरफ जाएगा। जो मरीज है उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर की हिदायात पे अमल करते हुए जल्द से जल्द जैसे ही डॉक्टर साहब उसको छुट्टी दें वो फौरन अपने घर जाएं, तो क्योंकि वो घर जाएंगे तो उसमें उन्हीं का फायदा है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे जरासीमों से पाक माहौल होगा, अपने घर वालों से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, उससे उनके अंदर
खाना भी ठीक
खाना भी अच्छा मिलेगा, नफसियाती तौर पे भी अपने आप को जो ना वो सेहतमंद महसूस करेंगे, अपने कामकाज में जाना शुरू कर देंगे तो उनको लगेगा कि बीमारी उनके जिस्म से जा
चुकी
है। बाकायदा रिसर्च हुई है कि जो मरीज अपना इलाज जो हॉस्पिटल के अंदर रिक्वायर्ड होता है उसके जो डॉक्टर्स के हद तक समझते हैं कि अब रिक्वायर्ड अभी घर में भी इसका बाकी इलाज हो सकता है उन ग्रुप में और जो हॉस्पिटल में उनमें देखा गया है कि जो अफराद घर के अंदर रह कर अपना इलाज बाकी कंप्लीट करते हैं जो एडवाइस होता है वो करते हैं वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा रिकवर करते हैं। इसमें बाकायदा रिसर्चेज है क्योंकि उसमें जैसे डॉक्टर सामा ने फरमाया कि आपको घर का एनवायरमेंट मिलता है,
घर का एनवायरमेंट मिलता है, खाने की फैसिलिटी है, बच्चे दीगर रिश्तेदार मिलते हैं उससे कोई इफेक्ट आता है। इसी तरह मदनी चैनल के नाजरीन कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर जो हदायत है उस पर अमल करें। डॉक्टर सामा हमारा दूसरा टॉपिक था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सेल्फ मेडिकेशन, इसको हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारे सिलसिले का टाइम खत्म हो रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, यानी ऐसी अद्वियात जो जरासीमों को मारने वाली हैं ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है कि उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो रही है कोते उसके खिलाफ यानी वो काम नहीं कर रही और उनका जो काम जिस काम के लिए वो इजाद की गई थी कि वो जरासीमों को मारेंगी वो काम पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है और इसकी कितने हैजर्ड्स हैं जो इंसानियत को दरपेश है।
देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का तो आपने खुद ही बता दिया कि वो क्या चीज होती है, अब मैं इसकी वजूहात कुछ पेश करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहली वजह यह होती है कि मेडिकेशन को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो डॉक्टर साहब ने आपको मेडिकेशन एडवाइस की कि आप इसको 7 दिन इस्तेमाल करें, लेकिन जब उसका 2-3 दिन के अंदर ही इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है तो वो दवाई लेना छोड़ देता है। और जब वो दवाई लेना छोड़ देता है तो जो जरासीम अभी पूरी तरह से नहीं मरे थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन दवाइयों के खिलाफ अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां ले आते हैं कि अब वो दवाई अगर आप दोबारा देंगे तो वो दवाई उन जरासीम के ऊपर असर नहीं करेगी, यानी कि एक तरह से ये समझ लें कि उन जरासीमों को इतना वक्त मिल जाता है कि वो अपने आप को उन दवाइयों से बचाने के लिए अपने अंदर तब्दीलियां ला सकें। अब इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो खास तौर पे जो लंबी अरसे के लिए दवाइयां जिन बीमारी में दी जाती हैं मिसाल के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस टीबी के अंदर जो है बाजू का 6 माह बाजू का 9 माह के दवाइयां दी जाती हैं तो इस तरह के मरीजों के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो बाकायदगी के साथ दवाइयों को इतने लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सके, लिहाजा वो दवाइयां जब बीच में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से ये देखा गया कि इन बीमारियों के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसकी शरह और भी तेजी के साथ और अलार्मिंग लेवल पे जो है ना ये बढ़ रही है कि इसी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी कि MDR TB की शरह में बहुत तेजी के साथ और बहुत ही खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है कि जो दवाइयां उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी फर्स्ट लाइन के तौर पे अब उन्हीं के खिलाफ जो है ना वो रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है। इस कदर इसका तनासुब बढ़ चुका है कि जो भी टीबी का मरीज डायग्नोज होता है उसका सबसे पहले ये टेस्ट किया जाता है कि क्या उसके अंदर ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला जो जरासीम है वो तो उसके अंदर मौजूद नहीं है।
आपके कहने का मतलब ये है कि टीबी उसको हुई, टीबी डायग्नोज हो गई, अब उसको दवाइयां दे रहे हैं लेकिन टीबी की दवाई उस पर असर नहीं कर रही।
जी उस पर असर नहीं कर रही और उसकी वजह यह है कि जो के उस के वो दवाइयां उसने सही तरह से नहीं ली, उसने बीच में छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन छोड़ दी, उसके बाद फिर 1 दिन खा ले, फिर 1 हफ्ता छोड़ दी, फिर कुछ दिन खा ले, तो इस तरह से दवाई अपना असर नहीं कर
सकती। आप इस बारे में कुछ ऐड करेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सेल्फ मेडिकेशन क्या है?
इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे सेल्फ मेडिकेशन का आपने बताया कि छोटी सी भी इन्फेक्शन होती है बंदे को, फॉर एग्जांपल गला खराब हुआ, अब गला खराब हुआ है तो उसकी बहुत वजूहत हो सकती है। अब गला खराब एक वायरस की वजह से हो सकता है जिसमें एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो गला खराब ऊंचा बोलने से या गर्दों को बाहर से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, जिसमें एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं है। इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स ले लेना, या मोशन लगते हैं, मोशन लगने में वायरल होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, तब उन सूरतों में आप एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, खुद से ले लेंगे या दुकान पे जाके वो जो फार्मासिस्ट होता है उससे ले लेंगे। तो आप एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे तो वो जो आपके जरासीम जिस्म के अंदर है या थोड़े बहुत ऐड होते हैं या जिस्म के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं, उन वो एंटीबॉडीज का सैंपल लेके उसके अंदर अपने जेनेटिक्स के अंदर ऐसे चेंजेस बना लेते हैं कि वो इस पर रेजिस्टेंस पैदा
हो जाती है। आपने साकिब भाई जो सामने बात की आपने उसको ऐड किया, माशाल्लाह के ये ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए कभी भी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करनी चाहिए और मुस्तना डॉक्टर से राबता करना चाहिए। हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हो रहा है, हम पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले जो हमने शुरू में किए थे। पहला सवाल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था, आपने फरमाया कपड़े का, जबकि इसका सही जवाब है खेती बाड़ी यानी फार्मिंग। और कुरान पाक में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है, इसका सही जवाब है 9 यानी 9 दफा। और फिर हमने एनिमल वेलफेयर के हवाले से टिप ऑफ द डे डिस्कस करनी थी। याद रखिए कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरतुल बकरा, 286 आयतें इसके अंदर हैं, और बकरा का मतलब है गाय। इसके अलावा भी बहुत से दीगर जानवरों का जिक्र कुरान पाक में आया है जिनमें हाथी, शहद की मक्खी, चूंटी वगैरह शामिल हैं, और यकीनन ये अंदाज हिकमत से खाली नहीं होगा। दीन इस्लाम जानवरों के राइट्स रिकॉग्नाइज करता है, जानवरों की लड़ाई, जुल्म, ज्यादा बोझ डालना, निशाने के तौर पे इस्तेमाल करना, ये सब जायज नहीं। ऐसा भी होता था कि जानवर खड़ा है, उसका जो हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया जाकर वो हिस्सा उतार लिया जाता था, बाकी जानवर तड़प तड़प कर मर जाता। 36 रिसर्चेस का मजमुआ हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटरिंग इज मोर ह्यूमेन, इस्लामी तरीका ज़बीहा बेहतरीन अंदाज है गोश्त को कंज्यूम करने का, कम से कम तकलीफ, अखराजात की भी बचत और आसानी से किसी भी जगह किया जा सके। यकीनन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो दी बेस्ट है, और दुनिया में हलाल मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इट्स हाइजेनिक, इट्स होलसम एंड इट्स ट्रस्टवर्दी। हलाल में अल्लाह की रजा है, सेहत है और इसी में बरकत है। और बड़ी ईद आने वाली है, छोटी ईद के बाद जारी बात है बकरा ईद आएगी, और इस ईद में एक रिसर्च के मुताबिक 40 ऐसे कारोबार हैं जो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, चारा, गोश्त फरोश, लकड़ी का काम, खालें, इट्स ए वेरी बिग इकोनॉमिक बूस्टर। मदनी चैनल के नाजरीन यकीनन ये दीन इस्लाम मेरे प्यारे अकालीसातुसलाम के दामन रहमत से बरसती हुई बरसात है, आइए हम भी खूब खूब नियतें कर लेते हैं कि इस रमजान के महीने में हम अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे, ये जो जरूरियात दीन का इल्म है ये हासिल करेंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जिसमें आप मदरसा पढ़ सकते हैं, कुरान पाक सही मखारिज से पढ़ सकते हैं, हत्ता के दरस निजामी और दीगर कोर्सेज भी कर सकते हैं। दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग इन कीजिए, वहां पर जाके टैब होगा ऑनलाइन कोर्सेज का, उसको क्लिक कीजिए, सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
Ramadan, ya marhaba, ahlan haba, Ramadan.